الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العلي العظيم. میرے دوستو، پردہ نشین، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم لوگ ماشاءاللہ ہر وینزڈے کو درس حدیث میں آتے ہیں اور اسلام کے بارے میں مسائل فضائل کو سیکھتے ہیں. گویا دین اسلام انسانیت کے لیے، ہر ایک کے لیے بڑی نعمت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. یہ علم حاصل کرنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، طلب العلم فریضتن علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مرد، ہر عورتیں، ان کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اتنا علم جو اس کو اللہ کی پہچان کروائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام پر چلائیں، جتنے بھی ہو، فرائض ہو، واجبات ہو، سنن ہو. عام طور پر عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ذمے تو صرف گھر کا کام کاج ہے. عام طور پر عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ذمے گھر کا کام کاج ہے، ہمارے ذمے بچوں کی پرورش کرنا ہے، ہمارے ذمے اچھے اچھے کھانے پکانے ہیں، ہمارے ذمے گھر کی اندر کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. یہ ایک پہلو ہے. لیکن دوسری طرف اس عورت کو اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے. شوہر اور بچوں کو تو راضی کیا، اپنے رب کو بھی راضی کرنا، گویا دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہاں، اس دنیا میں اللہ کی بندی بن کر زندگی گزارنی ہے اور اپنے خالق اور مالک اور پیدا کرنے والے، کھلانے والے، پلانے والے، سلانے والے، نعمتوں دینے والے اللہ کو راضی کرنا ہے. اس لیے اس کا پہلا قدم ہے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. جس آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ آدمی جو سفر کرتا ہے، راستے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کسی کے گھر کے قریب ہی گھومتا رہتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کون سا گھر ہے، اس لیے کہ اس کو راستے کا پتہ نہیں، قریب ہوتے ہوئے بھی منزل پر نہیں پہنچتا. اور اگر راستے کا پتہ ہو تو لنگڑا گدھا پر بھی بیٹھ کر آدمی اس کے گھر پہنچ جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے علم جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اگر اس کا پتہ ہو تو پھر انسان منزل مقصود تک اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے اللہ کو پا لیتا ہے. आजकल माँ बाप के दिल में दुनिया की तालीम हासिल करने की जितना वो इम्पोर्टेंट समझते हैं, आमतौर पर बच्चियों की और बच्चों की दीनी तालीम के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। चलो पढ़ लिया पढ़ लिया। हर घर में बाप सोचेगा कि मेरी बच्ची बीए कर ले, एमए कर ले, लेकिन शायद ही कभी किसी माँ बाप के दिल में, बहुत कम इल्ला माशा, उनके दिल में आया हो कि मेरी बच्ची तर्जुमे कुरान भी पढ़ ले, मेरी बच्ची बुखारी शरीफ भी पढ़ ले, तफसीर भी पढ़े। माशाल्लाह, ये आप लोगों के सामने मैं ये दर्स देता हूँ, करीबन 17 ईयर्स हो गए। 17 ईयर्स में तो ये सारे ही क्या कहते हैं आलिमा बन जाती अगर मैं बुखारी मुस्लिम तिरमिजी सब पढ़ाता। लेकिन एक ऐसी किताब का दर्स देता हूँ जिसमें बुखारी की भी हदीस है, मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है, अबू दाऊद शरीफ की भी हदीस है, नहीं बहुत सारी, और साथ साथ में मसाइल भी बताता चला जाता हूँ, तो गोया फिका भी है। अगर इसी नीयत से, पाबंदी से नीयत कर लो कि मरते दम तक हम दरस हदीस में शरीक होते रहेंगे, तो यकीनन खुदाए पाक की कसम, इल्म हासिल करने की नीयत से अगर कोई आता रहेगा कि मैं हर हफ्ता इल्म हासिल करने के लिए मदरसे में जाती रहूंगी और हदीस का और फिका का इल्म, कुछ मसाइल कुछ फजाइल सीखते रहेंगे, तो क्या होगा, अगर मौत भी आ गई तो तालिब इल्माना जिंदगी में मौत आएगी। अगर हम ऐसी नीयत करेंगे तो तालिब इल्म के लिए जितनी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं ना, सिर्फ इंटेंशन ही करना है ना कि हम तो तालिब इल्म है, चाहे उम्र रसीदा हो, चाहे 70 ईयर्स 80 ईयर्स, चाहे 30 40 40 साल 50 साल जो भी हो, लेकिन नीयत क्या होनी चाहिए, भाई हम इल्म हासिल कर रहे हैं, चाहे हफ्ते में एक बार हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में एक बार ही तो औरतों को दर्स देते थे, हफ्ते में एक बार देते थे। तो अगर ऐसी नीयत है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सलक का तरीक, जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह के रास्ते में चलते हैं तो वो रास्ते में, जमीन पर नहीं चलते, वो जन्नत के रास्ते में चलते हैं, और उसके लिए सहल अल्लाह लहू तरीकन जन्ना, जन्नत का रास्ता अल्लाह आसान कर देता है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सारी मखलूक उसके लिए दुआएं करती है, इंसान को सिर्फ नियत ही करनी है कि इंशाअल्लाह मरते दम तक में इल्म हदीस में आती रहूंगी, आते रहेंगे और ये सुनते रहेंगे और दर्स हासिल करते रहेंगे और अपनी जिंदगी को हम बनाएंगे। तो क्या है, मरते दम तक तालिब इल्म रहता, और इसी हालत में अगर मौत भी आ गई तो जैसे हदीस में आता है कि एक सहाबी वो एहराम की हालत में ऊंट पर से नीचे गिर गए और फिर क्या हुआ, इंतकाल हो गया, चोट आई, बहुत खतरनाक इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, उनको इसी एहराम की हालत में ही दफन कर दो। दफन कर दिया नमाज पर। फरमाया कयामत के दिन ये सहाबी तकबीर पढ़ते हुए उठेंगे, तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जिस हालत में है तो वैसे तो उठेंगे। हदीस में आता है कि अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए जाए और शहीद हो जाए, जा यौमल कयामा, कयामत के दिन वो आएगा, अल्लौन लौनुल रीह रिहुल मस्क, उसके बदन से खून का जो कतरा होगा, जो निकला था दुनिया में शहीद होने की वजह से, वो कयामत के दिन उसके लिए मश्क बन जाएगा, मश्क की खुशबू हो जाएगी, चूंकि अल्लाह के रास्ते में। तो जिस हालत में हुआ तो हम भी इसी तरह नियत ही करें कि हम तालिब इलम ही बनकर रहेंगे कि जब तक जिंदगी बाकी रही हम दरस हदीस में आते रहेंगे, दरस कुरान को सुनते रहेंगे, इंशाअल्लाह कयामत, अगर मौत आ गई इस हालत में तो जाहिरी बात है कि कयामत के दिन तालिब इलम के साथ ही, उलमा के साथ ही उठाया जाता है। चूंकि आप लोग हर हफ्ते दरस हदीस को सुनने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो हमें तो दुआएं मिलती है چرند پرند کی، مچھلیوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، وہ پڑھاتے تھے، فرمایا اب میں بیمار ہو گیا، اب میں نہیں پڑھاؤں گا. تو حضرت نے فرمایا نہیں، پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو، کوئی قیامت کے دن آئے گا دنیا کو لے کر، کوئی کیا لے کر، تو قیامت کے دن حدیث کو لے کر آئے گا. تو اس حالت میں اگر ہماری موت آ جائے کہ بھائی ہم نکالنا ایک گھنٹہ ہے انشاءاللہ، تیاری کر لیں کہ آج، اور خوشی خوشی آئیں کہ آج ہمیں درس میں جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے جانا ہے، تو اس کا بڑا فائدہ ہے. تو ویسے دنیاوی تعلیم تو دلوانا آسان ہے، لیکن اصل تو اس کو دین کا علم حاصل کرنا ہے. کوئی منع نہیں کر رہا ہے کہ دنیاوی تعلیم نہ دو، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے تو باپ تو مر گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، برسوں تک اولاد ان کے لیے احسان ثواب کرتی رہے گی، ورنہ کوئی کسی کو یاد کرتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ایسے باپ کو دفن کیا، ماں کو دفن کیا، بھائی کو دفن کیا، چچا کو دفن کیا، ماموں کو دفن کیا، اب دفن کر کے جا رہے ہیں تو فرشتے مٹی اٹھاتے ہیں اور ایسے ڈالتے ہیں، پتا ہے تمہیں؟ ایسے ہمیں تو نظر نہیں آتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اب کیا ہے وہ بھول جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتے. پھر ساتھ پہلے تو روزانہ جاتے تھے قبرستان، پھر تو ہفتے میں جانے لگے، پھر تو مہینے میں جانے لگے، پھر تو سالانہ جاتے، پھر تو جاتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں، چاہے ماں کی قبر ہو چاہے باپ کی قبر، ہے نا. ورنہ اگر وہ نہ ڈالتے تو ہم ویسے ہی گم 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 گمگیر میں مر جاتے، گم کرتے کرتے مر جاتے. ماں کا غم کسی کو نہیں، کس کو نہیں ہوتا، باپ کا غم کس کو نہیں ہوتا، بیٹی اور بیٹی کا غم کس کو نہیں ہوتا. یہ تو پہلے زمانے میں وہ علماء حضرات جو ہوتے تھے اپنی عورتوں کو گھر میں پڑھا لیتے تھے، لیکن اب تو یہ بھی مشکل ہے. ہر گھر پہلے زمانے میں مدرسہ ہوتا تھا ہر گھر میں، لیکن آج ایسا نہیں ہے. بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں توجہ دینی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ صحابیات کی زندگی کو دیکھو کہ ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا. صحابیات 124,000 صحابہ میں سے جو بڑے عالم تھے وہ کل ملا کر 149 124,000 میں سے بڑی چوٹی کے جو علماء صحابی تھے، صحابہ جو بڑے بڑے نالج والے تھے، کتنے تھے؟ 149. اور ان میں بھی ان 149 میں سے 149 میں سے 14 صحابہ اس سے بھی اعلیٰ تھے، جو جن کے لیول ان 149 سے بھی بڑا تھا. اور ان 14 میں سب سے بڑا نمبر عورتوں میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا ان 14 میں. تو 124,000 صحابہ میں سے سب سے بڑے عورتوں میں اگر کوئی عالمہ تھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے مسائل پڑھتے تھے، ان سے فضائل پڑھتے تھے. اور قرآن پاک کی حافظہ بننے کا سب سے پہلا اعزاز، سب سے پہلی سعادت اگر کسی کو ملی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ، قرآن پاک کی حافظہ بھی تھی. ہم تو کم سے کم سورہ یاسین ہی یاد کر لیں، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ چاہے ایک آیت روزانہ یاد کریں، میں نہیں کہتا ہوں رکوع یاد کر، ایک آیت یاد کر روزانہ. اتنا وقت نہیں کہ میں ایک آیت کو 50 بار پڑھ لوں، پھر کل اسی آیت کو 50 بار ریپیٹ کر لوں، پرسوں ریپیٹ کر لوں. تو آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کو یاد کریں گے تو ایک دن یاسین شریف منہ پہ ہو جائے گی. اور نیت یہ کرے کہ میں حافظہ بن رہی ہوں. کیا بن رہی ہوں؟ حافظہ. تو پہلے یاسین شریف یاد کرے، پھر سورہ کہف یاد کرے، پھر سورہ تبارک یاد کرے، پھر سورہ سجدہ یاد کرے جو ضروری ضروری ہے، سورہ دخان یاد کرے، ये तो पढ़ने का हुक्म है हदीस में, कुरान तो पूरा ही पढ़ने का हुक्म है, लेकिन इनके फजाइल बहुत ज्यादा है। आयतुल कुर्सी याद नहीं उसको याद कर लो, आमद अल रसूल याद नहीं उसको याद कर लो, चार कुल याद नहीं उसको याद कर लो, आखिरी 10 सूरतें याद कर लो तजवीद के साथ। आज तो बहुत आसान है, किसी शेख का कलाम चालू कर दिया और उसके साथ आप रिपीट करते रहे सूरह फलक को 20 टाइम, तो वैसे ही पढ़ने लग जाएंगे आप बिल्कुल शेख की तरह। तो ऐसा ही है, ये कोई जन में बुरी हो गई अब याद नहीं हो सकता, ये तो एक्सक्यूज है, शैतान पढ़ने नहीं देता। एक आयत यासीन वल कुरान अल हकीम, मैंने 100 बार पढ़ लिया आज या 50 बार, तो मुझे 100 बार पढ़ने का तो सवाब मिल ही गया 100 आयत का, और ऊपर से मुझे याद भी हो गई। अब आइंदा कल यासीन वल कुरान अल हकीम के साथ तीसरी आयत हम रिपीट करेंगे, दोनों को रिपीट करेंगे। ऐसा करते करते नियत के साथ कि मैं हाफिजा बन रही हूं, खाली सूरह यासीन नहीं, यासीन से शुरू करना है और मैं हाफिजा बन रही हूं, अगर इस हालत में मौत भी आ गई आधी यासीन करते हुए भी, खुदाए पाक की कसम कब्र में फरिश्ता उसको हाफिजा बनाएगा और कयामत के दिन हाफिजा बनकर उठेगी। ये तो हदीस है, नियत ही बदलनी है ना, नियत ही बदलनी है। चलो पहले मैं 10 सूरतें पक्की करती हूं तजवीद के साथ, तजवीद के साथ, और वो तो बहुत आसान है। आज तो बहुत सारे शुयूख की सूरतें फोटो भी नहीं, वैसे भी खाली सुनना ही है, तो सुन सुन कर एक एक आयत को याद करें। अगर अपने हम अपने फोन को तो माशाल्लाह हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने फोन ही में एक ऐप है प्ले स्टोर पर चले जाए, 13 लाइन कुरान है, अगर इसको डाउनलोड कर लिया 13 लाइन कुरान, इसको डाउनलोड कर लिया, फिर उसके अंदर में 50 शेख है, तो एक आयत को दबाओ ऊपर फिर दबाओ 50 बार, तो वो रिपीट करेगा उसी आयत को 50 बार, तो गोया आप साथ में पढ़ते जाओ और वो शेख पढ़ता जाएगा, आप साथ में रिपीट करते जाओ, याद होता हुआ चला जाएगा। आज तो लोग हाफिज बनते हैं, कई कई लोग हाफिज बन जाते हैं, और फिर याद हो जाए तो अपने घर में किसी को सुना दो, भाई मेरी सूरह अलम तरह सुन लो, मेरी 10 सूरतें सुन लो, ताकि नमाज तो नमाज में पढ़ना भी आसान हो जाए, तजवीद के साथ पढ़ोगे, वरना बहुत सारे वो लोग हैं जिन पर कुरान लानत करता है, तजवीद के साथ याद नहीं करते, गलत हजरत याद कर लेते हैं, इसलिए आजकल तो बहुत सारे रास्ते हैं याद करने के। तो अगर इस तरीके से याद करेंगे, कुरान को पढ़ते रहेंगे, तो कुरान पढ़ने का भी सवाब, हाफिज भी हो जाएंगे, हाफिजा भी बन जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जितनी सूरत याद हो गई, और अगर ना बन सके तो कब्र में तो बनने वाले हैं और कयामत के दिन हाफिजा की लाइन उसको उठा जाएगा। नियत ही बदलनी होती है। तो सबसे बड़ी पहली हाफिजा उम्मुल मोमिनीन और तुम्हें हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ना है, और सबसे पहले कुरान को सुनने वाली भी एक औरत है, और वो तो कौन है, सैयदा खदीजतुल कुबरा है। सबसे पहले जो आयत उतरी थी इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए, ज़म्मिलूनी मुझे उड़ाओ, क्या हुआ, कहा कोई आया था, ये आए 5 आयतें सबसे पहले सुनने वाली औरत है। औरत को ये शर्फ हासिल है, औरतों में सबसे बड़ी आलिमा सैयदा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा है, हाफिजा भी वो है, और सबसे पहली कुरान सुनने का जिनको सहारत मिली, और वो खदीजतुल कुबरा है, सबसे पहले उन्होंने सुना। और ये भी मजे की बात ये है, इस्लाम में सबसे पहले औरत शहीद हुई है, शहादत का दर्जा भी किसको मिला है, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला ने, औरतों में सबसे पहली शहीद होने वाली औरत है, यानी सबके अंदर में सबसे पहले तो हजरत सुमैया को शहीद किया था अबू जहल ने, और बहुत खतरनाक से उसको कहा था इस्लाम छोड़ दे, उसने कहा नहीं कुछ भी, बुढ़ी औरत थी, बहुत बुढ़ी औरत थी, करीबन 70 उसकी उम्र होगी, बड़ी बुढ़ी औरत थी, क्योंकि उनके साथ बेटे ही कितने बड़े थे, तो कैसे किया अबू जहल ने, एक रस्सी बांधी इस पैर में, एक रस्सी बांधी इस पैर में, और दो ऊंट को पैर के अंदर बांधा रस्सी, उसी रस्सी को इधर वाली रस्सी को ऊंट के पैर में बांधा, इधर वाली रस्सी को ऊंट के पैर में, तो दोनों ऊंट को भगाया तो बदन के दो टुकड़े हो गए, नाउज बिल्ला। इस तरीके से अबू जहल ने हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा को शहीद किया था। तो मजे की बात यह है कि इस्लाम में सबसे पहली शहीद होने वाली भी औरत है, सबसे पहली कुरान सुनने वाली औरत, सबसे पहली हाफिजा औरत, सबसे बड़ी आलिम औरत है। औरतों को तो ये बहुत बड़ी बात, कितना बड़ा एजाज है कि दीन की खातिर औरतों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है, कैसी कैसी कुर्बानियां दी है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वाकया मशहूर है, सबसे पहली नबी को तसल्ली देने वाली औरत है खदीजतुल कुबरा है ना, उन्होंने तो तसल्ली दी थी ना, यूं तो कहा था फिक्र ना करो, आप तो गरीबों की मदद करने वाले, बेवाओं की मदद करने वाले, यतीमों की मदद करने वाले, दीन का काम करने वाले, आपको कौन सताएगा, कुछ फिक्र ना करो। यह जब हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया लकद खशीतु अला नफ्सी, मुझे मेरी जान पर खतरा है, कोई जिन्नात या क्या, तो जिब्रील सलाम थे, तो हजरत खदीजतुल कुबरा आपकी अहलिया क्या कह रही, फिक्र ना करो आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। सबसे पहली तसल्ली देने वाली भी कौन है, मर्द को औरत है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु को सीधे रास्ते पर लाने वाली उनकी बहन है, ये वाक्य तो मशहूर है, बार बार हमने सुना है कि सबसे पहले बहन ने ही तो कहा था कि तुम कुरान नहीं पकड़ सकते, जाओ गुसल करो और फिर कुरान को पकड़ो, जब पढ़ा उन्होंने ताहा मा अनज़लना तो मुसलमान बन गए। हजरत इकरमा अबू जहल का बेटा है, अबू जहल का बेटा इकरमा है, इकरमा इब्ने अबी जहल जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो जब मुसलमान नहीं थे, इकरमा उस वक्त ये काफिरों के जर्नेल थे, बहुत बड़े थे, काफिरों के बड़े आदमी थे ये, और जंगे बदर में आए थे कुफार की तरफ से लड़ने के लिए, और इसने बहुत गंदी गंदी बातें कही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जब मक्का फतह हुआ तो ये भाग गए, मक्का मुकरमा से भाग गए, जिद्दा पहुंच गए और कश्ती में बैठ गए, कश्ती में बैठकर अब कहीं और जगह शाम की तरफ सफर करने का इरादा कर लिया, चुके मुझे कत्ल कर देंगे, मक्का मुकरमा में अगर रहा तो कश्ती में बैठ गए। तो उनकी बीवी इकरमा की बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आने के बाद क्या कहा, मैं मुसलमान बनना चाहती हूं। कहा मुसलमान बन जाओ। कहा मैं मुसलमान तो बन गई, क्या अगर मेरे शोहर को मैं ले आऊं आपके पास, उनको आप पना देंगे? फरमाया ठीक है जाओ ले आओ। तो ये गई जल्दी जल्दी, दूसरी कश्ती ली, कश्ती में बैठी और जाकर उस कश्ती का फॉलो किया और जाकर अपने शोहर से कहा चलो वापस। कहा मैं नहीं आऊंगा, मुझे तो कत्ल कर देंगे। कहा नहीं, मैं मुसलमान बन चुकी हूं और मैंने आपके लिए पनाह ले ली है, आपको कुछ नहीं होगा। तो वापस आए और इस्लाम कबूल कर लिया। तो एक मर्द के पीछे उसको ईमान लाने और कामयाब बनाने वाली औरत है, औरत ही तो है जिसने तो इकरमा को लाए, जो इतने बड़े अबू जहल। और जब वापस आए तो अल्लाह के नबी को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया इकरमा आ रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को कहा इकरमा को उसके बाप अबू जहल के बारे में कुछ नहीं बताना, ताने नहीं देना, उसको कुछ कहना नहीं कि तेरा बाप ऐसा था। चूंकि अबू जहल तो इस उम्मत का फिरौन था, खतरनाक, बल्कि फिरौन से भी बदतर था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखो। जब आए इकरमा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े मुआनका करने के लिए, कहां गए थे, कान में कहा तू किधर गया था, कब से तेरा इंतजार था, मुसलमान बना लिया। इस औरत के, इस सहाबी के इस्लाम लाने और कामयाब बनाने के पीछे औरत कहां गए, उनकी बीवी कहां गए। हजरत उम्मे सुलेम रजी अल्लाह तआला अनु को देखो, उम्मे सुलेम रजी अल्लाह तआला अनहा ये कौन है, हजरत अनस रजी अल्लाह का नाम आपने सुना है, अनस बिन मालिक मशहूर सहाबी है। वो फरमाते हैं कि मुझे मेरी माँ ने बचपन ही से समझाया था, when I was small my mother said to me कि अल्लाह के महबूब से मोहब्बत रखा करो, जाकर उनकी खिदमत किया करो। मैं छोटा बच्चा था, मुझे कहा करती थी मेरी माँ, कहने भाई देखो मौल साहब की खिदमत करना, शेख साहब की खिदमत करना, उनकी बात को सुनना, उनके पास बैठना, इस तरह से कहते ना माँ। तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि हजरत अनस को उनकी माँ ने कहा था जाकर अल्लाह के नबी से मोहब्बत रखना और उनके खिलाफ न बोलना और उनकी खिदमत करना। हमेशा मुझे मेरी माँ शीशी देती थी, बोतल, ऐसी बोतल देती थी और कहती थी जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कैनुल्ला करे, गर्मी होती थी, पंखे तो नहीं होते, एसी तो नहीं होता था, तो आपके बदन से क्या निकलता था, पसीना, तो मैं उस पसीने को ऐसे उंगली से लेता था और बोतल में भरता था, देखो ना आप सऊदी जा रहे हो कितना पसीना निकलता है, तो ऐसे लेता था और अंदर में भरता था। समझ में आई बात? तो मैंने अपनी वालिदा से पूछा कि अम्मी इसका क्या करोगी। वो कहती है मैं उनको अपने इत्र के अंदर में शामिल करूंगी। दुनिया का इत्र है ना, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना जो है मैं शामिल करूंगी, मिक्स करूंगी, तो मेरा इत्र जो है उसका इजाफा बहुत हो जाएगा, यानी बहुत खुशबूदार बन जाएगा। अल्लाह के नबी का बदन तो जन्नत की मिट्टी से बना है, और जन्नत की मिट्टी में तो क्या होती है, खुशबू, और जन्नत की खुशबू। इसीलिए वो औरत क्या करती थी, फिर उम्मे सुलेम जब किसी लड़की की शादी होती थी तो उसमें वो लगा देती थी, तो लोग कहते ये खुशबू किधर से आ गई। इसलिए सहाबा पहचानते थे कि यहां से नबी का गुजर हुआ है, कैसे, जब वो गुजरते थे तो उस गली से खुशबूएं आती थी, सहाबे किराम पहचान लेते थे। खैर, उम्मे सुलेम रजी अल्लाह ताला अनु वो इतर को स्थिति, अनस रजी अल्लाह ताला अनु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम बने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बड़ी दुआएं की, अल्लाह उनके रिज़्क में बरकत दे, उनके औलाद में बरकत दे, इज्जत में बरकत दे। क्या हुआ, इस सहाबी के पीछे, इस बच्चे के पीछे कामयाब बनाने वाली उनकी मां है, औरत ही तो है। इसीलिए औरतें आई, एक सहाबिया हाजिर हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द तो मस्जिद में आते हैं, कभी नमाज के बाद दर्स सुन लेते हैं आपके, या कभी बयान सुन लेते हैं। हमारे यहां पर कभी जमात आ गई तो बैठ गए 6 नंबर में, कभी फजर के बाद, कभी असर के बाद बैठ गए। हम औरतों को कौन सुनाने वाला है, हम तो घर में है, घर में कैद है, हमें कौन सुनाएगा। तो आप हमारे लिए एक दिन मुतय्यन करो, हमें भी दर्स दिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, उनके लिए दीन को मुतय्यन कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सवाल करने वाली ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखा, ये सवाल करने वाली भी कौन है, औरत है। फिर आपने फरमाया जो औरत अपने घर में नमाज पढ़ लेती है अल्लाह ताला उसको मर्द के बराबर सवाब घर में दे देता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब जमात के साथ 27 नमाज का है, और ये घर में पढ़ेगी, मस्जिद में नहीं आती है, कहां पढ़ेगी, घर में, तो उसको वहां पर 27 नमाज का सवाब आराम से मिल जाता है। और ये भी फरमाया जो औरत अपने बच्चे के लिए रोने की वजह से, बच्चा रोता है, बीमार है, परेशान है, फुला फुला है, रात में जागती है, तो अल्लाह उसको मुजाहिद के बराबर सवाब देता है। कौन मुजाहिद, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए जाते हैं, रात और दिन जागते हैं। तो इसी तरह जो दुश्मनों की सरहद पर रात जागकर पहरा देने वाले मुजाहिद की तरह, देखा हर बॉर्डर के ऊपर फोर्सेस होती है ना, तो इस्लामिक बॉर्डर पर भी फोर्स होती है, तो वो रात को भी जागते हैं कि कहीं कोई रात को हमला न कर दे, तो जैसे उनको सवाब मिलता है अपनी उम्मत कौम की हिफाजत के लिए, ऐसे रात में बच्चों के लिए जागने वाली मां को सवाब मिलता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए वेडनेसडे का दिन मुतय्यन किया। इसीलिए जब मेरे सामने ये बात आई कि यहां औरतों में बयान करना है, तो मैंने भी वेडनेसडे को ही मुतय्यन किया, ताकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत भी जिंदा रहे। तो आप लोग हर वेडनेसडे को आती है, माशाल्लाह 17 ईयर्स हो गए, मेरे लिए भी दुआ करो अल्लाह मुझे भी सेहत दे, आफियत दे, तंदुरुस्ती दे, और दीन का काम करने की मुझे इखलास के साथ तौफीक दे, आफियत के साथ। तो उस दिन सहाबियात मस्जिद नबी में आती थी दर्स सुनने के लिए, आज जैसे हमारी माए और बहनें आती है मदीना मस्जिद कुबा में दर्स को सुनने के लिए, तो आती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को दर्स दिया करते थे, तो मालूम होता है कि औरतों के लिए भी महफिल दर्स की जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। ये तो औरतों की झलक है, औरतें क्या करती है, मेहनत करे तो, औरत ही मेहनत न करे तो फिर कैसे होगा। समझ में आई बात? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बेटी देखो, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की, तो आज की तो मेरी टॉपिक है जी ख्वातीन इस्लाम का इल्मी जौक, क्या कहते हैं, हमारी मुसलमान माओ का, इस्लाम की ख्वातीन का इल्मी जौक शौक, उसको इल्म हासिल करने का जी शौक होना चाहिए। ये ही टॉपिक है, इमाम मालिक के बारे में आता, जब वो दर्स देते थे तो बच्चे सामने बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, तो वो तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर दर्स देते थे, और पर्दा लगा हुआ होता था, पीछे उनकी बेटी और भी औरतें, दरस हदीस को सुनती थी और हदीस की तालिबा थी, वो तो बड़ी बड़ी आलिमा थी, इमाम मालिक की बेटी। तो अगर उधर इबारत पढ़ने वाला कोई मिस्टेक करता तो पीछे से आवाज करती थी, वो बोलती नहीं थी आवाज, इमाम मालिक समझ जाते इसने गलती की है, इतनी बड़ी आलिमा थी। हदीस में कोई गलती होती थी तो पीछे से बजाती थी लकड़ी की तरह, या कोई लकड़ी होती उसको बजाती थी, तो समझ जाते थे सब कि पढ़ने वाले ने कोई गलती की है हदीस को पढ़ने में। सो उनकी बेटी बड़े बड़े उलमा की गलतियां दुरुस्त करती थी, ये औरत ही तो है, समझ में आई बात। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इतना इल्मी मकाम अता फरमाया था, तो उस दौर में औरतों का शौक हुआ करता था, बाज औरतों का शौक था वो कुरान की किताबत करती थी, यानी कुरान को लिखती थी। आज भी है पाकिस्तान, मैंने सुना एक लड़की ने पूरा कुरान लिखा सोने के वायर से, सोने के जो होते ना गोल गोल, उससे पूरा कुरान लिखा, अजीब। तो आज भी है ऐसे शौक रखने वाले इल्म के साथ। इसलिए याद रखो, हमारी औलाद को हम पढ़ाएंगे इल्म दीन देंगे तो ये हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएंगे, और अगर हम उसको दीनी इल्म नहीं देंगे, दुनियावी इल्म तो दे दिया लेकिन दीन से हमने उसको महरूम रखा, ना जरा कुरान से, जी बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी है उसके लिए। कि उसको दुआए कुनूत नहीं आता तो माँ बाप ने उसको नहीं सिखाया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं यहां पर एक घर पर मुझे दावत दी गई कि बच्ची हिंदू के साथ शादी करना चाहती है, एक हिंदू, कट्टर हिंदू के साथ। तो मैं गया उस लड़की को समझाया माँ बाप के सामने, उसने कहा मेरे लिए तो इस्लाम और हिंदुइज्म बराबर है, हिंदू मजहब और इस्लाम मेरे लिए क्या है, बराबर है। मैंने कहा क्यों बेटी, इस्लाम तो अलग का नहीं, मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझे बताया ही नहीं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, तो फिर उसमें कसूर तो माँ बाप का है ना जी। हम अपने बच्चियों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ करवा दिया, लेकिन जब ये हासिल कर सकती है तो वो दीन क्यों हासिल नहीं कर सकती। हमारे यहां मदरसे में देखो, मेरे पास 17 years से पढ़ाते हैं हम JKN में, मैं अमेरिका बुखारी शरीफ पढ़ाता हूँ, मैं बर्मिंगम बुखारी शरीफ पढ़ाता हूँ, लड़कियों के मदरसे में भी है, तो कितनी लड़कियां आलिमा बनती है जी। इस साल 27 है, 27 लड़कियां, आइंदे साल 60 आलिमा बनेगी, तो पढ़ने वाली है। हालांकि उसमें 16 या 15 तो दादी और नानी है, समझ में आ रही बात, सारी तो बच्चियां नहीं है, उसमें पढ़ने वाली दादी और नानी भी है, और पढ़ने वाले मेरे पास दादे और नाना भी पढ़ते हैं, मैं ही उनमें सबसे छोटा होता हूं, अभी नाना बना ना, लेकिन मैं तो पढ़ाता हूं 17 years से, तो दादा और नाना वाले भी पढ़ते थे, कितने आलिम बन गए। मैंने मिसाल दी हमारे यहां माशाल्लाह हमारे मौलाना गुलाम रसूल है, देखो 75 years की उम्र है लेकिन वो आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने। तो ये तो एक बहाना है कि हम नहीं पढ़ सकते, ये शैतानी वसवसा है। अगर नहीं भी है, करते रहेंगे तो फिर क्या है, हदीस में आता है जब औरत पढ़ती है या मर्द पढ़ता है या बच्चा पढ़ता है लेकिन स्टटरिंग करता है, पढ़ नहीं सकता, स्टटरिंग करता है यानी टोतराता है, बराबर नहीं पढ़ सकता, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको डबल सवाब मेहनत करने का, समझ में आ रही बात। तो जो मेहनत करेंगे तो जाहिर बात है अल्लाह उसकी मेहनत को जाया नहीं करता है। हाँ ऐ मेरी माए और बहने, अगर आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी, अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दी, कल अगर बेटी से अल्लाह ने पूछ लिया तूने BA तो कर लिया, MA तो कर लिया, इंग्लिश तो पढ़ ली जी, इंग्लिश जबान भी सीख ली, जर्मनी जबान भी सीख ली, उज़्बेक जबान भी सीख ली, सब कुछ सीख लिया, क्या मेरे कुरान का तर्जुमा पढ़ा था, मेरे कुरान का तर्जुमा पढ़ा था। अगर बेटी ने कहा मुझे तो फुर्सत नहीं मिली या मां ने मुझे उस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, तो बेटी को तो पकड़ लिया जाएगा, उसके पीछे मां बाप को भी पकड़ लिया जाएगा। ये तो कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, कुरान पाक में साफ साफ अल्लाह ने कहा कयामत के दिन कुछ नौजवान बच्चों को उनकी बेअमली की वजह से, जो अमल नहीं करते दुनिया में, दीन पर नहीं चलते रहे, दीन नहीं हासिल करते, बेअमली की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। तो वो बच्चे, नौजवान बच्चियां अल्लाह के सामने मुकदमा केस पेश करेगी, जी केस करेगी अल्लाह के सामने और कहेगी हमारे परवरदिगार इन्ना अतअना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला। कुरान की आयत है, सूरतुल अहज़ाब की आयत है, आयत नंबर 67 है, उसमें तो साफ साफ है हमने अपने बड़ों की और अपने बाप दादा की पैरवी की, उनको फॉलो किया, उनके हुक्मों को माना और उन्होंने हमें सही की जगह गलत रास्ते पर लगा दिया। ये कुरान कह रहा है, यानी वो बच्चे भी अल्लाह के सामने केस करेंगे कयामत के दिन। हाँ जी, तो मैंने तुझे बच्चियों को, अम्मी ने कहा ग्रेजुएट बनना है तो बच्ची ने बनकर दिखा दिया, डॉक्टर बनना है तो बच्ची ने बनकर दिखा दिया, मास्टर डिग्री लेनी है बच्ची ने मास्टर डिग्री लेकर दिखा दी, हाँ हो गई जी। तूने एमए बीबीसी वो सब करना है, बीएसबी आदमी वोट एंड वोट है, वो सब करना था कर लिया, लेकिन बच्चियों का रुख अंग्रेज की, अंग्रेजी की तरफ तो फेर दिया, दीन की तरफ नहीं फेरा। हम ना नहीं कहते कि ना कराओ, खूब कराओ, दुनिया में जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ क्या कराओ, दीन का इलम भी हासिल कराओ, दीनी माहौल में रखो। हाँ, वरना फिर क्या कहेंगे अल्लाह तबारक बताला, हमें इन बरों ने गलत रास्ते पर डाल दिया, दीन से महरूम रखा, ये केस करेगी कयामत की बच्ची। तो अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में 67 के बाद 60 आयत है, 68 नंबर आयत नंबर, रब्बना आतीहिम दिफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। वो कहेंगे अल्लाह इन्होंने हमको रॉन्ग रास्ते पर डाला, ये हमारे रब अब आप ही उनको डबल अज़ाब देना। भाई आतीहिम दिफ़ैन डबल अज़ाब देना, मिनल अज़ाब वलअनहुम और उन पर लानत की बारिश बरसा। अरे मेरी माए और बहने, अगर कयामत के दिन हमने अपने बच्चियों को, हमने बच्चों को सही रास्ते की तरफ नहीं डाला, खुद अपने आप को सही रास्ते पर नहीं डाला कि ये खुद तो दुनियादार थे, हमें भी दुनियादार बनाया, अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं तुम सबको दुगनी लानतें भेजूंगा, दुगना अजाब दूंगा, तो कयामत के दिन औलाद भी जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगी। आई बात समझ में आई बात? और अगर औलाद नेक है तो कयामत के दिन औलाद को उनके मां बाप के साथ जन्नत में भेज दिया जाएगा। हाँ, इसलिए आज वक्त है उनको कुछ ना कुछ दीन पढ़ा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। वक्त नहीं, पर मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी का। ये नवाब की बेटी थी, जब शादी करके आई मौलाना कासिम नानोतवी के साथ, तो मौलाना कासिम नानोतवी तो एक आलिम आदमी थे, बहुत गरीब बच्चे थे, तो ये लेकर आई नवाब की बेटियां, तो बड़ा सोना, ओहो जेवरात गले में, हाथ में या कान में, पैर में, बहुत ज्यादा सोना लेकर आई नवाब की बेटी। तो फिर उस वक्त क्या कहा, रात को जब गए अपनी बीवी के पास तो कहा तू तो अमीर है मैं तो फकीर हूं। क्या कहा, बीवी तू तो अमीर है, मैं तो सारी जिंदगी मेहनत भी करता रहा तो भी इतना इतना सोना मैं हासिल नहीं कर सकता। अपनी बीवी के साथ कहा, अगर तू मेरा जैसा बनना चाहती है तो अभी बन सकती है, मेरा जैसा फकीर बनना चाहे। मैंने पूछा वो कैसे, यानी उनकी बीवी ने कहा वो कैसे, तो उन्होंने कहा ये जो तुम्हारे पास सोना है ना, आजकल खिलाफत उस्मानिया टर्की में, उस वक्त खिलाफत उस्मानिया चल प्रॉब्लम था तो मुसलमानों की मदद की जरूरत थी, ये निकाल दे और उनको दे देते हैं, उनको जरूरत है उनको हम भेज देते हैं। तो ठीक है, निकाल के दे दिया, तो सब कुछ दे दिया। अब दूसरे दिन, अभी दूसरा दिन होता है ना, तो मोहल्ले की औरतें, कुछ रिश्तेदार बूढ़ी लोग आती है और देखती, इसके तो कान में कुछ नहीं, इसके तो हाथ में भी कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया भी बुढ़िया होती है जो फितने पैदा करती है ना, तो आकर कहते देखो ये अपने माँ बाप के ऊपर भारी पड़ती थी तो वैसे ही भेज दी बगैर किसी सोना के वगैरह के, तो इसको तो बहुत दिल पर लगा कि देखो मेरे माँ बाप को ताना दे रहे, मुझे ताना दे रहे। तो रात में रोने लगी, तो शुरू कर दिया रोना उसने। हजरत नानोतवी आए, उन्होंने पूछा क्या बना, कहा मैं तो घर छोड़ कर आई और मुझे तो घर जाना है, घर जाना है। घर गए, जरा छोड़ दिया। तो बाप को पता चला कि बेटी तो वापस आई है, पूछा क्या हुआ, कहा इस तरीके से हुआ, मैंने सब सोना दे दिया तो औरतों ने मुझे ताना दिया कि मुंह फट की आ गई इधर। तो बाप ने कहा फिक्र नहीं। फिर उस जमाने के 1 लाख रुपए के जेवरात और बनाए बाप ने, वापस दिया। और उसको अब जब उस मर्तबा नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे पास रात में आए, वापस में आ गई, यानी मुझे कहा कि ले जाओ, मैंने कहा मुझे ले जाओ, तो वापस आ गई हजरत नानोतवी के घर। तो रात को जब मेरे पास आए, कहने लगे ए अल्लाह की बंदी, मैंने तुझे मजबूर तो नहीं किया था जी, तुम चाहती हो कि हमारी जिंदगी खुशी से गुजरे, तो ये सोना चांदी तो सांप और बिच्छू की तरह है, कि जो आदमी सोना चांदी पहने फुला फुला इस तरह कहा उनको, तुम कैसे उन्हें गले लगाए रखो, ये तो सोना चांदी तो ये तो गोया के क्या है, सांप बिच्छू है। फरमाती है उन्होंने बात की, ये उनकी तवज्जो का मेरे ऊपर असर था, यानी ऐसी बात की मेरे साथ कि मुझे वो सोना सांप नजर आने लगा। इन अल्लाह वालों की नजरें देखो, वैसे भी सोना और चांदी की जकात नहीं दी तो सांप बन जाएंगे हदीस में, ये तो सोना चांदी तो सांप है बिच्छू है, कुरान में है, हदीस में है, बुखारी शरीफ में। तो ऐसी बात की उन्होंने, तो कहा मैं इधर देखती थी मुझे सांप नजर आता था, बिच्छू नजर आते थे, मैंने फौरन निकाल दिए और बाहर कर दिए जी। तो अपने जिस्म से सारा सोना उतार दे, फरमाने लगे ना ना, तो कहा नहीं नहीं मुझे तो उतारने हैं, नहीं उतारने मुझे तो उतारने हैं, मुझे नहीं चाहिए। वापस हजरत ने उसको भेज दिया उन मुजाहिदीन को। अब कहा मुझे तो आप जैसा बनना है, नवाब की लड़की देखो, और आजकल की वो आज किसी ने वीडियो भेजा ना, कहते हैं औरतें ही बड़ी प्रॉब्लम करती शोहर को, और औरत कहने लगी शोहर बड़े प्रॉब्लम करते हैं, कि मैंने अपने शोहर को कितनी बार कहा कि अपनी किडनी बेचकर मेरे लिए आईफोन 15 ले आ, अपनी किडनी बेचकर आईफोन 15 ले आ मेरे लिए, देखा। और उस जमाने में क्या है, अपना सोना दे दिया। और कारी तैयब साहब, ये कारी तैयब साहब की क्या होती है, क्या होती है, दादी, कारी तैयब साहब की दादी होती है ना मौलाना कासिम साहब नानोतवी, तो दादा होते हैं। कहा मैंने आलिमा बनी मिश्कात, कारी तैयब साहब फरमाते हैं मैंने मिश्कात शरीफ मेरी दादी से पढ़ी है, यानी उसके सोना तो दे दिया, और फिर वो हजरत अपने शोहर से आलिमा बन गई, और वो कारी तैयब साहब के उस्ताद भी बनी, कि मैंने मिश्कात मेरी दादी से पढ़ी है। देखा उस जमाने में औरतों में शौक था। अब तो 1 घंटा भी दर्स हदीस सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये काम है फुला काम है फुला काम है फुला काम है फुला काम है, भाई ये घंटा तुम्हारे लिए 1 हफ्ते में पूरे हफ्ते के लिए बैटरी चार्ज है, अगर तुम अल्लाह के रसूल की बातें सुनोगी तो इंशाअल्लाह घर का माहौल भी बदलेगा, आखिरत की रुसवाई से बचेंगे, और अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन हमारी हिफाजत फरमाएंगे। कयामत के दिन जो आदमी अल्लाह रसूल की बात पर चलेंगे तो ला युज़िल्लाहु नबिया, अल्लाह नबी को जलील नहीं करेंगे, वल्लदीन आमनु मा, जो उनके साथ ईमान लाए उनके तरीके पर चले उनको भी नहीं। इसीलिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ा इल्म हासिल किया, बड़ा मकाम। जब उनकी वफात हुई तो किसी को ख्वाब में आए, इमाम मोहम्मद इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, उसने पूछा हजरत कब्र में क्या बना, फरमाया मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सामने खड़ा किया, और फरमाया मैंने तुम्हारे सीने में इल्म इसलिए नहीं पढ़ा था कि आज तुझे अजाब दूं, मैंने तुझे हदीस का इलम इसलिए दिया है कि आज तू भी जन्नत में जाएगा और तू हजारों को लेकर जन्नत में जाएगा। तो इलम ऐसी चीज है कि अल्लाह पाक के यहां ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज क्या है, इल्म है। इल्म होगा तो वुजू आएगा, इल्म होगा तो तहारत आएगी, इल्म होगा तो नमाज आएगी, इल्म होगा तो जकात दे सकेंगे, इल्म होगा तो हज उमरा कर सकेंगे। इल्म ही नहीं है ईमान के बाद तो कैसे ईमान के तकाजों पर चलेंगे। इसलिए इल्म का जिक्र सबसे ज्यादा कुरान में ईमान के बाद अल्लाह ने बयान फरमाया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाकुर दावान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا। اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, نیک بندیوں میں شامل فرما, اے اللہ جتنی مائیں اور بہنیں آئی ہیں اللہ تیرے نیک بندیوں میں شامل فرما, اے اللہ نیک اور صالحات میں قانتات میں, اے اللہ صائمات میں شامل فرما, اے اللہ تائبات میں شامل فرما, اے اللہ استغفار کرنے والوں میں سے ہمیں بنا, توبہ کر جانے والوں میں سے ہمیں بنا. یا اللہ ہمارا آنا اور جانا, درس میں بیٹھنا تو قبول فرما, ہمارے نجات کا ذریعہ بنا, مغفرت کا ذریعہ بنا, رحمت کا ذریعہ بنا, پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا. اللہ ہمیں اور ہماری اعلیٰ اولاد کو دین کا اور علم حاصل کرنے کا شوق پیدا فرما, جتنا ضروری علم ہے اتنا سیکھنے کا ہمیں شوق نصیب فرما. یا اللہ یہ مائیں اور بہنیں اور یہ ہمارے بھائی دور دور سے آتے ہیں الحمدللہ درس حدیث میں, اے اللہ یہ طالب علم حدیث کے, اے اللہ سب کا آنا قبول فرما, سب کا جانا قبول فرما, سب کا بیٹھنا قبول فرما, سب کا سننا قبول فرما, اور مکس تھلڑ کے ذریعے سے دنیا میں لوگ سن رہے ہیں سب کا سننا قبول فرما, ریسیور کے ذریعے سے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں دور دور تک سب کا سننا قبول فرما. اے اللہ علمی مجلس میں آ کر بیٹھنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما, تاکہ ہمیں علم کا, علم کی روحانیت ملے, علم کا فیض ملے. اے اللہ ہمیں قبول فرما, تیرے دین کے لیے قبول فرما, اے اللہ تیرے راستے میں قربانی دینے کے لیے قبول فرما. اے اللہ یہ کوئی بڑی قربانی نہیں, چھوٹی قربانی ہے, کام کاج کو ادھر ادھر کر کے تیرے نبی کی بات کو سننے کے لیے آتے ہیں, سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ اس چھوٹی موٹی قربانی کو قبول کر کے ہماری قبر بھی بنا دے, ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ان مخلصین اور مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.